नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के जलाना में आयकर विभाग ने स्टील, कपड़ा व्यापारी और रियल एस्टेट डेवलपर के परिसरों में 1 अगस्त से 8 अगस्त तक की छापेमारी में लगभग 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इनकम टैक्स की टीम ने जालना में की गई इस छापेमारी में 56 करोड़ रुपए नकद, 32 किलो सोना, बेशकीमती गहने और प्रॉपर्टी के कागजात जब्त किए हैं। कारोबारियों के यहां से बरामद की गई रकम को गिनने में आयकर विभाग को 13 घंटे से ज्यादा लग गए। छापेमारी के दौरान इस ऑपरेशन को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। इस बात की आधिकारिक जानकारी किसी को नहीं दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जालना के कई कारोबारी कथित रूप से नकद लेन देन में लिप्त थे और अतिरिक्त राजस्व का रिकॉर्ड न दिखाकर टैक्स की चोरी कर रहे थे। ये छापेमारी 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच हुई थी। कथित तौर पर स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ नासिक IT अधिकारियों की 5 टीमों ने इस छापे में हिस्सा लिया था। ट्विटर के साथ कानूनी लड़ाई से पहले टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने कंपनी में अपने करीब $7 अरब के शेयर बेच दिए हैं। मस्क ने शेयर बाजारों को ये जानकारी दी। मस्क ने बताया कि उन्होंने हाल ही के दिनों में टेस्ला इंक में अपने करीब 80 लाख शेयर बेचे हैं। टेस्ला और ट्विटर दोनों में ही मस्क सबसे बड़े शेयरधारक हैं। मस्क ने ट्वीट किया, अगर ट्विटर सौदे को पूरा करने का दबाव बनाती है और कुछ इक्विटी साझेदार साथ नहीं आते हैं तो टेस्ला के शेयरों की आपातकालीन बिक्री से बचने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है। मस्क ने आरोप लगाया था कि कंपनी ट्विटर के फर्जी खातों की संख्या के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दे सकी, जिसके चलते उन्होंने ये सौदा रद्द किया। मस्क ने इस साल की शुरुआत में करीब $44 अरब में ट्विटर के अधिग्रहण का समझौता किया था। आयकर विभाग ने हाल ही में जयपुर स्थित एक समूह पर छापेमारी के बाद 150 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय का पता लगाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बृहस्पतिवार को बताया कि ये समूह रत्न और आभूषण, आतिथ्य एवं रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा है। आयकर विभाग ने छापा मारने की कार्रवाई 3 अगस्त को शुरू की थी। इस दौरान राजस्थान के जयपुर और कोटा जिलों में व्यापारिक समूह के 3 दर्जन से अधिक परिसरों की छानबीन की गई। CBDT ने अपने बयान में इस समूह का नाम नहीं बताया। बोर्ड ने कहा कि विभाग ने अब तक 11 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित संपत्ति जब्त की है। CBDT कर विभाग के लिए नीति तैयार करता है। बयान में कहा गया कि कर अधिकारियों ने पाया कि समूह ने आवास और जमीन की बिक्री पर नकद लेकर कथित तौर पर बड़े पैमाने पर कर चोरी की। बोर्ड ने कहा कि इस नकद राशि को कंपनी के नियमित बही खातों में दर्ज नहीं किया गया था। बयान में आरोप लगाया गया कि रत्न और आभूषण तथा आतिथ्य कारोबार में भी अनियमितताओं का पता चला है। विमानन कंपनी एयर इंडिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि वो 20 अगस्त से 24 अतिरिक्त घरेलू उड़ानों का परिचालन करेगी। एयरलाइन ने एक बयान में कहा, अतिरिक्त 24 उड़ानों में से 2 दिल्ली से, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद तथा मुंबई से चेन्नई और हैदराबाद के लिए होंगी। इसके अलावा मुंबई, बेंगलुरु तथा अहमदाबाद पुणे मार्ग पर नई उड़ानें शुरू की जाएंगी। एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी कैंप बेल विल्सन ने कहा, हम विमानों को सेवा में वापस लाने के लिए पिछले 6 महीनों से अपने भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमें खुशी है कि इस प्रयास के सार्थक परिणाम दिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड महामारी के दौरान दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल अभूतपूर्व दर से बढ़ा है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि भारत में 7% से अधिक आबादी के पास डिजिटल करेंसी है। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास संस्था UNCTAD ने कहा कि 2021 में क्रिप्टोकरेंसी रखने वाली आबादी की हिस्सेदारी के लिहाज से 20 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से 15 विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं थीं। इस सूची में 12.7% के साथ यूक्रेन शीर्ष पर है। इसके बाद रूस, वेनेजुएला, सिंगापुर, केन्या और अमेरिका हैं। भारत में 2021 में कुल आबादी में से 7.3% लोगों के पास क्रिप्टोकरेंसी थी और इस सूची में उसका स्थान 7वां है। UNCTAD ने कहा, कोविड के दौरान विकसित देशों समेत दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग बेहद तेजी से बढ़ा है। चीन ने इस वर्ष नेपाल को 15 अरब रुपए की अनुदान सहायता देने का वादा किया है, जिसे विभिन्न परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा। नेपाल और चीन के संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन गए नेपाल के विदेश मंत्री नारायण खड़का ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ व्यापक मुद्दों पर वार्ता की थी, जिसके बाद ये घोषणा की गई है। वांग के निमंत्रण पर चीन के आधिकारिक दौरे पर गए खड़का ने बुधवार को चीन के शहर क्विंग दाओ में वांग से मुलाकात की। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, दोनों विदेश मंत्रियों ने नेपाल चीन संबंधों के सभी पहलुओं का जायजा लिया और व्यापार, कनेक्टिविटी, निवेश, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरीबी उन्मूलन, कृषि, आपदा प्रबंधन, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच आदान प्रदान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई। वांग ने घोषणा की कि चीन 2022 में नेपाल को विभिन्न परियोजनाओं में निवेश करने के लिए 15 अरब रुपये की सहायता देगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।